तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, विद्या मंत्रादिना गृहिणम वशी स्थापित्वा, विद्या द्वारा या मंत्र के द्वारा उस गृहस्थ को वशीभूत करके उसका वशीकरण कर लिया और लब्धा वसति, वसति प्राप्त कर ली। तो अभिहित दोष, अभिहित नाम का दोष, अभिहित दोष मतलब ये ऊपर जो कहे हुए दोष, मंत्र दोष, चूर्ण दोष, योग दोष, मूल कर्म दोष, ऐष्णा दोषान एवं जानी ही। अब इसमें मंत्र के द्वारा वश कर्म कर लो या चूर्ण के द्वारा भी कर लेते हैं, कई ऐसे चूर्ण होते हैं जिनका योग ऐसा रहता है कि अगर वो चूर्ण अपने हाथों में लगा लें और फिर किसी से बात करें तो फिर वो अपने अनुकूल होता है। वो चूर्ण अपने हाथ में लगाओ ना, या अपने पैरों में लगाओ, कहीं भी लगा लो ऐसे कुछ किसी स्थान पर, फिर उसके साथ चर्चा करो तो फिर वो सब अपने अपने अनुकूल होने लग जाता है। तो इस प्रकार चूर्ण के द्वारा, योग के द्वारा, योग भी होते हैं कई, कुछ ऐसे ध्यान कर लिया अपन ने बैठ करके और फिर उसमें कुछ ऐसे यंत्र मंत्र का या किसी चीज़ का ऐसा इस्तेमाल करके कर लिया तो उससे वशीभूत हो जाते हैं। फिर मूल कर्म, मूल कर्म का अर्थ होता है अब आहार संबंधी जो मूल कर्म है वो तो ये है कि तुम आज तुमने धोती दुपट्टा नहीं पहना, अरे तुम्हारे यहाँ आहार होने की मेरी वो चल रही है योजना, ऐसा मौका थोड़ी मिलेगा बार बार, जाओ देर मत करो। मूल कर्म नाम का दोष मतलब उसको पूरा मतलब उसके लिए लगा देना। इसी प्रकार ये वसतिका के संबंध में भी अगर ऐसा कर ले तो फिर मूल कर्म नाम का दोष। अब ऐष्णा दोष कैसे होते हैं, 10 प्रकार के ऐष्णा देखते हैं। किम यम योग्यावस्थिर न इति शंकिता, अब ये मेरे योग्य है या नहीं है ऐसी शंका अगर साधु के मन में आ जाए और वहां ठहर जाए तो फिर शंकित नाम का दोष उनको लगेगा। तदानीमेव सिक्ता लिप्ता वा मर्क्षित दोष, उसी समय जिसमें पानी का सिंचन किया गया है और जिसमें नीचे जमीन लेपते हैं ना अथवा दीवारों में चूना वगैरह लगाते हैं तो उसी समय अगर किया जाए साधु के आने के पहले जस्ट, तो फिर वो मर्क्षित नाम का दोष हो जाएगा। फिर सचित्र पृथिव्यप्ते जो वायु वनस्पति बीजानाम त्रसानाम उपरि स्थापितम पीठ फलकादिकम अत्र मया शय्या कर्तव्या या दीयते वसते सा निक्षिप्ता, अब गीली सचित्त पृथ्वी माने जीवित जो भूमि है या अप सचित्त जल है या तेजो अग्नि है या वायु है और वनस्पति के संबंध रखने वाले बीज हैं और त्रस जीव हैं, इनके ऊपर अगर कोई पाटा वगैरह बिछा करके साधु को ठहराया जाता है या सोने के लिए स्थान दिया जाता है तो फिर वो निक्षिप्त नाम का दोष है। फिर सचित्त मृत्तिका पिधान मपाकृष्य या दीयते सा पिहिता, और सचित्त मिट्टी का जो आवरण है उसको अपाकृष्य हटा करके फिर जो स्थान दिया जाता है साधु को ठहरने के लिए वो पिहित नाम का दोष है। फिर काष्ठादिकाकर्षणम कुर्वता पुरो यायिना उपदर्शिता वसिता वसति साहरणा, साहरण वसति कौन सी मानी जाती है, दूषित लकड़ी आदि को खींचकर आगे चलने वाला जो गृहस्थ है वो साधु को उपदर्शित करता है कि महाराज ये जगह है ये जगह है, सब लकड़ियाँ वकड़ियाँ खींच करके आगे ऐसे लेते जाता है, आइए महाराज हटाते हुए ले जाता है। और वो पहले क्या था कि ईंटा वगैरह हटा करके कर रहा था, अब यहाँ पर इस प्रकार से ले जा रहा है तो वो पिहित मतलब इनसे बंद जो वसतिका है उसको खोल करके देता है वो पिहित नाम का दोष है। और साहरण दोष, पिहित दोष तो बतला दिया था कि उसके ढक सचित मिट्टी आदि के आवरण को हटा करके जो दिया जाता है वो पिहित है। फिर काष्ठादि आकर्षण कुर्वता लकड़ी का आदि को खींच करके अलग करने वाले और याइना पुरो याइना आगे चलने वाले उपदर्शिता गृहस्थ द्वारा उपदर्शित दिखाई गई जो व्यस्ती है वसती है वो साहरण नाम की दोष से दूषित है। मृत जात सूतक युक्त गृह जनेन व्याघातेन ग्रथिलेन दीयमाना, देखो मृत जात सूतक मरण से उत्पन्न हुआ जो सूतक होता है या जात यानी जन्म से उत्पन्न हुआ जो सूतक है उससे युक्त अगर गृहस्थ अथवा व्याधितेन व्याधि से युक्त बीमार कोई गृहस्थ है उसके द्वारा अथवा ग्रथिलेन, ग्रथिलेन का अर्थ होता है कोई भूत पिशाच से ग्रसित हो उसके द्वारा अगर कोई स्थान दिया जाए साधु को तो दायक दोष दुष्टाहुति, मतलब आहार भी अगर साधु ऐसे लोगों से ले ले तो फिर वो दायक दोष लगता है उसमें, और फिर स्थान भी, रहने का स्थान भी अगर ऐसे लोग देते हैं साधु को रहें ठहरने के लिए, तो वो भी दायक दोष से दूषित होते हैं। इसमें शराबी भी आ जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे 5 महीने की गर्भिणी जो है वो भी इसी में शामिल है दायक दोष में। स्थावर ही त्रसई ही पिपीलिका मत्कुण आदि भी सहितोन मिश्रा। अब जिस निवास स्थान पर स्थावर जीव हैं और त्रस जीव हैं, चीटियां हैं, मत्कुण यानी खटमल है, तो इनसे सहित अगर कोई स्थान साधु को ठहरने के लिए मिलता है तो उन्मिश्र नाम का दोष है। रात भर सोए हैं लेकिन शरीर में खटमल काट रहे हैं या फिर चीटियां चल रही हैं। फिर अधिक वितस्ति मात्रया भूमेर अधिकाया ग्रहणम प्रमाणातिरेक दोष। अधिक वितस्ति मात्रया भूमे है माने वितस्ति मात्र, बीता, कुछ बीतों का परिमाण होता है साधु के स्थान के लिए, तो उससे ज़्यादा अगर स्थान साधु रोक करके उसको स्वीकार कर लेगा स्थितिका को, तो फिर उनको प्रमाण अतिरेक नाम का दोष लगता है। कितनी बातें हैं इसमें। शीत वातातपाद द्युपद्रव सहिता, शीत वात आदि के उपद्रव से सहित वसति ही एवं निंदाओं कुर्वतो, ऐसी निंदा करते हुए वसनम नहना धूम दोष है। ये धूम नाम का दोष है। जैसे आहार में भी धूम दोष होता है ना, आहार ले लिया लेकिन साथ में बाद में निंदा कर दी कि क्या तुमने आहार कराया, बिल्कुल उपवास था और एकदम घी भी ठीक से नहीं चुपड़ा गया, पूरा रूखा सूखा करा दिया भोजन, अथवा एकदम ठंडा कराया। अरे भाई साधु आते हैं, एक बार आते हैं, एक बार लेते हैं भोजन, कम से कम कुछ गर्मा गर्म होना चाहिए। ये सब बातें, ये धूम दोष से दूषित, निंदा करना मतलब जो चीज़ मिली है उसकी निंदा करना धूम दोष है। फिर निर्वाता विशाला नात्युष्णा, जो वायु से रहित है, विशाल है, न अधिक गर्म है, शोभना यमिति, अच्छी जगह है, तो अरे बढ़िया जगह है ये, तो ऐसी जगह होना चाहिए साधु के लिए। इति तत्रानुराग, इस प्रकार उस वसतिका के प्रति अनुराग होना इंगाल दोष है। इंगाल दोष है, जैसे आहार के प्रति अनुराग हो जाए लेते लेते तो भी इंगाल दोष लगता है, वैसे ही वसतिका में। एवमेतैर उत्पादन उद्गम आदि दोषये रणोपहता वसति शुद्धा, इस प्रकार उद्गम आदि दोषों से जो उपहत नहीं है ऐसी वसतिका शुद्ध होती है साधु के लिए। तस्याः उस वसतिका का दुःप्रमार्जनादि संस्कार रहितायाः, दुःप्रमार्जनादिक संस्कारों से रहित उस वसतिका का जीव संभव रहितायाः, जीवों की उत्पत्ति से रहित शय्या रहितायाः, और पलंगादिक से रहित वसत्या जो वसतिका है उसके अंतर बहिर्वा वसति, अंदर या बाहर यति साधु जो है ठहर जाते हैं, तो वो विविक्त शय्यासन रत, विविक्त शय्यासन नाम का तप हो जाता है। अतः का विविकता वसति रितिरत्याह, अब विविक्त वसति कौन सी होती है, तो उसके लिए कहते हैं सुन्न घर गिरि गुहा रुक खमूल आगंतु गादि गार देव कुले अकदप्पार रारा मधरादीनी या विविताइं। विविक्त घर किसको कहते हैं, शून्यम गृहम खाली घर हो, गिरेर गुहा पर्वत की गुफा हो, वृक्ष मूलम पेड़ का तल हो, निचला भाग पेड़ के नीचे बैठ जाए तो विविक्त वसति है। फिर आगंतुका नाम वेशम, आने वालों के लिए जो धर्मशाला वगैरह होती है वो, और देवकुलम, देवकुल का अर्थ होता है भगवान का मंदिर, इसका मतलब मंदिर में भी ठहर सकते हैं। अभी कुछ लोग इस पर आपत्ति उठाते कि मंदिरों में नहीं रहना चाहिए साधुओं को, जंगलों में रहना चाहिए। खैर ऐसा एकांत नहीं है, सब बातें मतलब इसको थोड़ा बड़ा दिल करके सोचो। शिक्षा गृह यानी स्कूल वगैरह में भी ठहर सकते हैं, और अक्सर विहारों में तो ऐसे ही होता है, स्कूलों में ही ठहरना पड़ता है, और वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, बिल्कुल उचित है। और केनचित अकृतम, या फिर किसी ने नहीं बनाया ऐसा कोई स्थान हो, अकृत प्राग बहारम कथ्यते, अपने आप कोई ऐसी गुफा वगैरह जैसी प्रकृति में ही कोई ऐसा स्थान है तो वहाँ भी ठहर सकते हैं। आराम गृहम, आराम गृह का मतलब होता है बगीचा, क्रीडार्थम आयातानाम आवासाय कृतम, अथवा जो क्रीड़ा के लिए वहाँ आते जाते हैं उनके लिए बनाया गया कोई स्थान है। एता विविक्ता वसते है, इस प्रकार की ये विविक्त वसतियाँ होती हैं क्रीड़ा के लिए आने वाले, मतलब जिम्नाजियम वगैरह जो होते हैं ना, जहाँ पहलवान लोग आते हैं, अब वो आकर के चले गए, अब कोई वहाँ पर है नहीं तो वहाँ ठहर सकते हैं साधु। फिर भी क्या होता है कि कुछ स्थानों पर थोड़ा संभल करके ही ठहरना चाहिए, नहीं तो ठहरे और फिर वहाँ पर उनके एक्सरसाइज देख करके साधु को भी जोश आने लग जाए तो दिक्कत हो जाए कि मैं तो इससे भी ज़्यादा करता था व्यायाम, हमारा ध्यान नहीं था घड़ी की तरफ। अभी अपना आज का मृत्यु महोत्सव का भी स्वाध्याय है, तो फिर अगले रविवार का भी समय है अपने पास, समझ लो 27 तारीख का जो रविवार है उसका भी सुबह का टाइम तो है ही, अपने सुबह का टाइम नहीं है, रामायण है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, चिंता मत करो आप, हमारी जिम्मेदारी अत्र वसतेर दोषाभाव माचष्टे। अब वसते में दोष का अभाव बतलाते हैं। एक गाथा दी है, कलहो बालो मज्झंझा वामोहो संकरो मम तिंच जानझैण विघादो अनथ्य विविताय वसधीये। विविध वसति का अगर होगी ना तो फिर यहाँ पर इतने नुकसान नहीं होंगे। कलहो ममेदम च वसति तवेदमेति कलहो न, ये मेरा निवास है ये तेरा निवास है, ऐसे झगड़े नहीं होंगे, शून्य घर होगा तो। और केनचित अन्य जन रहितत्वात्, कोई ऐसा झगड़ा नहीं करेगा क्योंकि अन्य जन से रहित है वो विविक्त वसति। बालो शब्द बहुलता, फिर बाल किसको कहते हैं, जहाँ पर बहुत बोलो, बोलो शब्द है ना, बालो नहीं है, बोलो का अर्थ होता है जहाँ बहुत आवाज़ें आ रही, शब्द की बहुलता है, ध्वनियाँ खूब हो रही है, मोटरसाइकिल चालू कर भर्र, फिर कभी ट्रक की आवाज़ आ रही, कभी हॉर्न बज रहे हैं और कभी वहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं, कभी कुछ भी अनेक प्रकार की आवाज़ है, कभी वो फुल ब्लास्ट वॉल्यूम में रेडियो मिर्ची चालू है तो ये सब जो आवाज़ें हैं वो जहाँ नहीं होता, जिन स्थानों पर नहीं होती, वो स्थान साधु के योग्य होता है। झंझा संक्लेश, झंझा का मतलब होता है संक्लेश, तीव्र कषाय उत्पन्न हो जाए ऐसे स्थान पर। फिर व्यामोह वैचित्यम, व्यामोह का मतलब होता है मन नहीं लगना, चित्त का अनमनाभाव। संकरम अयोग्य ही रसंयत ही सहमिश्रणम, संकर का मतलब होता है कि जहाँ पर असंयमी लोग भी साथ में रह रहे हो, इसीलिए कहते हैं कि साधु को असंयमियों के साथ शयन नहीं करना चाहिए। साधु को सोते समय बाकी लोगों को अलग कर देना चाहिए वहां से, नहीं उनको नींद में पता नहीं क्या, वैसे ही जागृत अवस्था में असंयमी है, सोते समय अगर वो मान लो किसी को सोते समय चलने की आदत हो या फिर सोते समय लाते मारने की आदत हो तब क्या होगा साधु का भाई उपसर्ग आ जाएगा, या फिर सोते में बड़बड़ाने की आदत हो उसको, या जोर से खुर्राटे लेने की आदत हो, तो साधु सो रहे हैं फिर बाद में रात भर जाग रहे हैं उसके, वो सो रहा है फिर ऐसे असंयमियों के साथ साधु को नहीं सोना चाहिए। फिर ममत्वम ममेदम नास्ति, जहां पर ममता ना उत्पन्न हो जाए ऐसे स्थान। ध्यानस्य अध्ययनस्य च व्याघात, यानस्य गलत छप गया ना, ध कर दो वहां पर बाजू में, जो प्रिंटिंग में शायद इंक छप नहीं पाई, क्या लिखा है उसमें आपकी प्रतियों में बड़ी वाली में, यानस्य लिखा है तो ध्या कर देना उसको, ध्यान और अध्ययन का जहां पर व्याघात हो जाए। तो इति विविक्त शय्यासन तप विधान, इस प्रकार विविक्त शय्यासन तप का विधान है। अब आखिरी जो तप है वो काय क्लेश नाम का तप है, उसका वर्णन आगे किया जाएगा 450वीं गाथा। बाह्य तप का विवरण है, 12 अनुप्रेक्षाओं का विवरण पूर्ण हो चुका। बाह्य तप के विवरण में काय क्लेश तप की चर्चा। दुस्सह उसग जई आतावण सीय वाय खिन्नुवी जूण विखेदं गच्छदि काय किलेसो तवो तस। चार सौ अड़तालीस ऐसा ऐसा कैसे हो गया? गाथाएं कम तो कहीं नहीं हुई थी। दुस्सह उपसर्गों पर विजय प्राप्त करने वाले आतापन, शीत और वात, या आतापन और शीत वात, शीत वात यानी ठंडी हवा, इनसे खिन्न होते हुए भी जो खेदम न विगच्छति, जो खेद को प्राप्त नहीं होते, तस उन मुनि के कायक क्लेशो तबो, कायक क्लेश तप होता है। टीका देख लीजिए। तस्य निर्ग्रंथ मुनि ही कायक क्लेश, कायस्य शरीरस्य उपलक्षणात् इंद्रियादेश च क्लेशः, क्लेशनम दमनम कदर्थनम तपो भवति। उन निर्ग्रंथ मुनि के पास कायक क्लेश, कायस्य शरीरस्य, काय यानी शरीर, और उपलक्षणात्, उपलक्षण न्याय लगा लो तो उससे इंद्रियादेश, इंद्रियादिक से भी संबंधित जो क्लेश है, दमन है, कदर्थन है, वो कायक क्लेश तप होता है। तस्य कस्य, वो कौन से मुनि? यो मुनि खेदम श्रमम चित्त क्लेशम, खेद का अर्थ श्रम होता है, चित्त क्लेशम मानसे खेद खिन्नत्व, मानसिक खेद खिन्नता भी होती है, उसको नापि गच्छति नैव प्राप्नोति, नहीं प्राप्त होते। कीदृक विधो मुनि, कैसे हैं वे मुनि? तो आतापन, शीत, वात खिन्नोपि, आतापन, शीत, वात से खिन्न होते हुए भी। आतापनम, आतापन किसको कहते हैं? दुस्सह सूर्य किरण संतप्त पर्वत शिला तलेषु, जिसको सहा नहीं जा सकता, ऐसे सूर्य की किरणों से तपे हुए पर्वत की शिला, शिलाओं के तलों पर। वैशाख ज्येष्ठ मासादिषु, वैशाख और ज्येष्ठ माह आदि में आतापनम, जो तपा डालते हैं शरीर को, वह आतापन योग धारण। उक्तंच, कहा भी है, दिनकर किरण निकर संतप्त शिला निचयेषु निःस्पृहाः। योगी भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये पंक्ति कही है। दिनकर किरण, सूर्य की किरणों के निकर यानी समूह से संतप्त, तपी हुई शिला निचयेषु, चट्टानों के समूह पर, निःस्पृहाः, शरीर के प्रति कोई स्पृहा आकांक्षा न रखते हुए जो तपस्या करते हैं उनका यह इत्यादि शुझनियम, ये आतापन योग नाम का कायक क्लेश तप होता है। शीतकाले, अब शीतकाल में पौषे माघे च, पौष महीना आता है, माघ महीना भी आता है। नद्यादि समुद्रादि कूले, नदी आदि के अथवा समुद्र आदि के तट पर, वन मध्यस्थ चतुष्पदे च, और वन के मध्य में स्थित जो चतुष्पथ है, कोई ऐसा चौराहा जैसा है, हिम भवम शीतम, जो सर्दी हो जाती है वहाँ पर, बहुत ठंडक आती है, उसको शीत कहा। तथा कहा भी है, अविरत बहल तुहिन कर्ण वार विरंग्रिप पात पत्र पा शातनी इत्यादिकम जनियम। बहुत सुंदर छंद ये योगी भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि कैसे कैसे तपस्या करते हैं। अविरत बहल तुहिन, निरंतर बहुत अधिक मात्रा में तुहिन यानी बर्फ, उसके कण और वारी भी, और जल के साथ अंग्रिप पत्र शातनी ही, कैसे हैं वो जल कण और बर्फ के छोटे छोटे कण जो हिमपात के समय पड़ रहे हैं, तो कहते हैं कि उसके विशेषण अंग्रिप पत्र शातनी, वृक्षों के पत्तों को नष्ट कर डालने वाले। और उस समय इसके आगे की पंक्ति आती है, इहश्रमणा धृति कम्बलावृता शिशिर निशाम गमयंती चतुपथे स्थिता। तो उस समय इस धरती पर जो श्रमण मुनि होते हैं, निर्ग्रंथ साधु, वो चतुपथे स्थिता, चौराहे पर खड़े होकर के, धृति कम्बल आवृता, धीरज रूपी कम्बल को ओढ़कर, तुषार विषमाम निशाम गमयंती चतुपति स्थिता, बर्फ जिसमें बहुत अधिक है और बहुत विषम है जो रात्रि, जिस रात को अच्छे अच्छे कमरों के अंदर, कक्षों के अंदर भी लोगों की नींद बीच बीच में टूट जाती है, ऐसी ठंड पड़ रही है, उस समय वो उस चौराहे पर जा करके खड़े रहते हैं, तपस्या करते हैं। ये अभ्रावकाश योग कहलाता है, ये भी काय क्लेश तप का दूसरा भेद है। फिर ऐसा नियम कैसे बना सकते हैं? क्योंकि अभी भी पंचम काल में भी प्रारंभ में तो कई साधुओं ने जंगलों में ही निवास किया। नगरों का निषेध नहीं है साधुओं के लिए, नगरों में भी निवास कर सकते हैं। वो तो अभी पिछले उसमें निकला था कि कैसा स्थान होना चाहिए, वो आगम के अनुरूप स्थान कौन सा होता है, उसका उल्लेख था उसमें। और फिर इसमें संघनन का ऐसा विधान भी नहीं मिलता स्पष्ट कहीं भी कि अमुक संघनन वाले ही ऐसा तप करें, तो जिसकी क्षमता है, शक्ति है, वो कर सकते हैं। वर्षा काल है, वर्षा काल में वन मध्यस्थित वृक्षादि मूले, जंगल के बीच में खड़े हुए वृक्ष आदि के मूल में अर्थात नीचे, झंझावातादि सहनम, झंझावात आदि को सहन करना। फिर ये वही पूज्यपाद स्वामी की पंक्ति है, शिखी गल कज्ज लाल मल नैर विबुधाधिप चाप चित्रित भीम रवय विशिष्ट चंडा शन शीतल वायु वृष्टि भी गगन तलम विलोक्य सहसा स्थगितम जलदही तपोधना। ऐसी पंक्ति आती है योग भक्ति में, पूरा ये छंद है कि इस प्रकार शिखी गल कज्जल, मोर के गले जैसा काला काला बादलों का समूह देखकर, और अलिमलि नहीं मतलब भ्रमर जैसे भी मलिन बादलों को देखकर वो खड़े हो जाते पेड़ के नीचे, और चौमासे के समय बरसात की हवाओं की बाधाओं को शांतिपूर्वक सहन करते। वृक्ष मूल योग नाम का एक काय क्लेश तप है। आतापनंच शीतंच वातश्च आतापन शीत वाता तई खिन्न खेदम प्राप्त जर्जरी कृत, उससे वो खिन्न को खिन्नता को तो प्राप्त हुए हैं, जर्जरीकृत हो गए हैं, लेकिन यहाँ अपिशब्द, अपिशब्द दिया अखिन्न। अपिशब्द से क्या लेना कि खिन्नता को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। पुनः की वृक्ष और कैसे हैं, दुस्सहोपसर्ग विजयी, सहन करना जिसका कठिन है ऐसे उपसर्ग को जीतने वाले। दुस्सहा दुखेन महता कष्टेन सह्यन्ते इति दुस्सहा, जो बहुत कठिनाई से सहन किया जाता है उसको दुस्सह कहते हैं। तेच ते उपसर्गा, वैसे वे उपसर्ग देव मनुष्य तिर्यग चेतन कृता, देवों के द्वारा किया जाता है उपसर्ग, मनुष्यों के द्वारा किया जा सकता है, तिर्यंचों द्वारा किया जा सकता है, अचेतन कृत भी उपसर्ग हो सकता है। देवकृत उपसर्ग किनको हुआ था, कोई दृष्टांत? पार्श्वनाथ भगवान को। फिर मनुष्यकृत उपसर्ग गजकुमार मुनि को हुआ था। फिर तिर्यकृत उपसर्ग सुकौशल मुनि, सुकुमाल स्वामी, इन पर हुआ था। और अचेतन कृत उपसर्ग भी हो जाते हैं, कभी दीवार गिर पड़े या फिर एकदम पहाड़ पर भूकंप आ जाए, कहीं चट्टाने खिसक जाए वहाँ से, या फिर बाढ़ में कुछ बह जाए। उपलक्षणात् क्षुत पिपासाद है परिशह गृहंते, फिर उपलक्षण से इसको उपसर्ग के साथ में और क्या ले लेना, जो परिशह हैं, जो कष्ट हैं, वो ग्रहण कर लिए जाते हैं। तान दुस्सह उपसर्गान परिहार परिशहांश्च जयति इत्येवंशील, इनको जीतने वाले दुस्सह परिशर दुस्सह उपसर्ग जयी तथा चारित्र सार आदव। फिर चारित्र सार आदिक में, चारित्र सार एक ग्रंथ का नाम है, चामुंडराय कृत है, उसमें वृक्ष मूलाभ्रावकाश आतापन योग वीरासन कुक्कुटासन पर्यंकासन संकुचित गात्र शयन उत्तान शयन मकरमुख हस्तिशुंड मृतक शयन ही। अब देखो सोते समय भी कितने प्रकार से सोते हैं, ये तो वृक्ष मूल अभ्रावकाश और आतापन तो ठीक है, तीन प्रकार के योग हो गए। फिर शयन करते समय कुछ अलग अलग प्रकार के आसन है, बैठते समय वीरासन। अब वीरासन के बारे में ऐसा उल्लेख है योग शास्त्र में कि ये जैसे पद्मासन लगाते हैं उसी प्रकार यदि इन एड़ियों को अपने पेट के साथ लगा दिया जाए और पैरों का स्पर्श पिंडलियों से न हो सके तो फिर उसको वीरासन कहा। वीरासन तीन प्रकार के हो गए। फिर एक खड़े होकर के भी वीरासन होता है जो अन्य मतों में प्रचलित है, कि जिस आसन में हनुमान संजीवनी पहाड़ उठा करके लाए थे, एक हाथ ऐसा था और एक हाथ ऐसा था जिस पर पहाड़ था, और फिर नीचे पैर जो थे वो एक बायां पैर जो इस तरफ वाला हाथ ऐसा था वो पैर सीधा रहेगा, और फिर दाहिना पैर जो है वो घुटने से मुड़ा रहेगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि आसन जो है उसका हम शब्दों में वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा आसन वो वीरासन है। फिर एक वीरासन जो है वो बैठ करके किया जाने वाला वीरासन है, उसमें क्या होता है कि एक पैर जो है वो वज्रासन मुद्रा आप जानते हैं सब लोग, घुटने आगे की तरफ रहते हैं और फिर नीचे पैर अपने पिंडलियाँ वगैरह ऐसे नीचे की तरफ रहती है, तो उसमें एक पैर वैसे रख करके और दूसरा जो पैर है उसको सामने रखना पड़ता है थोड़ा सा। मतलब ये हुआ कि एक पैर तो बिल्कुल वज्रासन जैसे ही रखना है, लेकिन दूसरा पैर जो है उसको उठा करके वहाँ से पहले बाएं पैर के घुटने के पास उस पैर को ऐसे रखना समतल, फिर ये घुटना ऊपर हो जाएगा ऐसे, फिर उस घुटने के ऊपर ऐसे अपनी कोहनी टिका करके ऐसे करके बैठना है सीना फुला करके, ये वीरासन। इस प्रकार ये वीरासन तीन प्रकार के होते हैं वीरासन। फिर कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन के क्या अर्थ होते हैं कि जैसे अभी आजकल जो योग आश्रम वगैरह में लगवाते हैं पद्मासन लगा लिया, और फिर पद्मासन लगाने के बाद ये जो अपनी पिंडली है और ये जांग है इनके बीच से हाथ को निकाल करके नीचे ज़मीन पर ले आना, और फिर उन हाथों के ऊपर पूरे शरीर को जर धरती से उठा लेना, ये कुक्कुट आसन है। मतलब उसमें नीचे जो है ये हाथ अपने ऐसे लगते हैं जैसे मुर्गे के पैर हो, और ऊपर का शरीर जो है वो मुर्गे जैसा लगता है, ये कुक्कुट आसन। कुक्कुट का अर्थ मुर्गा होता है। फिर पर्यंक आसन। पर्यंक आसन का स्वरूप योग शास्त्र में दिया है, स्यात् जंगयो रदो भागे पादो परिकृते सति पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिण उत्तर पाणिकः। मैंने अपनी जंगयो रदो भागे, ये जंगाओं के जो अधो भाग है नीचे वाले भाग, ये जंगा किसको कहते हैं, घुटने के नीचे वाले भाग को जंगा कहते हैं, और घुटने के ऊपर वाले भाग को संस्कृत भाषा में जंगा नहीं कहा जाता, संस्कृत भाषा में उनको ऊरू कहते हैं, और अभी तो हिंदी में लोग जांग को जंगा बोलने लगे हैं। वास्तव में जांग अलग है और जंगा अलग है। जंगा पिंडलियों वाले भाग को कहते हैं और ऊपर वाले भाग को जांग कहते हैं। तो क्या करना है उसमें पर्यंक आसन लगाने के लिए, स्यात् जंगयो रदो भागे, जंगा के निचले भाग जो हैं पादोपरिकृते सति, ये दोनों जो पैर हैं उनके ऊपर अगर हो जाए, जैसे अभी हम बैठे हुए ना, ये बिल्कुल वही मुद्रा है जो उसमें बताई गई है। स्यात् जंगयो रदो भागे, जंगाओं के निचले भाग पादोपरिकृते सति, दोनों पैरों के ऊपर कर लेने पर, ये जैसे ये मुद्रा बिल्कुल व्यवस्थित है। और उसके आगे क्या करना है, पर्यंको नाभि गोत्तान, नाभि को प्राप्त उत्तान दक्षिण उत्तर पाणिक, उत्तान जो दक्षिण और उत्तर पाणिक, दक्षिण पाणिक यानी ये ऊपर दाहिना हाथ और उत्तर पाणिक यानी बायां हाथ, ऐसे रहेगा। अभी जैसे पूर्व दिशा की ओर हमारा मुख है, तो फिर ये हाथ किस तरफ है, दाहिना हाथ राइट हैंड किस तरफ है, ये दक्षिण दिशा है, और फिर ये उत्तर पाणिक किसको कहोगे, ये उत्तर दिशा है। तो ये पूर्व मुखी होने पर ये बायां हाथ जो होता है वो उत्तर की तरफ रहता है, और फिर दाहिना हाथ दक्षिण की तरफ रहता है। तो दक्षिण उत्तर पाणिक, दक्षिण पाणिक और उत्तर पाणिक, ऐसे नाभिगोत्तान, नाभि स्थान पर उत्तान अवस्थित हो जाए, तो इसका नाम है पर्यंकासन। आचार्य श्री जब कायोत्सर्ग करते हैं भक्ति आदि के समय, तब ये पर्यंकासन रहती है। हाथ ऐसे टिका दो तो वो पर्यंकासन नहीं है, पर्यंकासन में हाथ ऐसे रखना। तभी तो उसमें कहा है कि मूर्ध रूह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनं चापी। रत्नकरण में बताया ना कि सामायिक कितने समय करना, तो बोले मूर्ध रूह मुष्टिवासो बंधम, माने सिर के बाल बांध लो, वो ढीले पड़ जाए तो समझना कि सामायिक का काल पूरा हो गया, लेकिन गठान खतरनाक वाली मत लगाना, नहीं तो वो ढीली न पड़े दो चार दिन तक। वैसी गठान नहीं, सामान्य गठान लगाओ, थोड़े ढीले पड़ जाते हैं कुछ समय के बाद, तो उस गठान से आप सामायिक कर लीजिए। सामायिक का काल अब घड़ी रखने की आवश्यकता नहीं है आपको हर जगह, तो उससे भी कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है, मुष्टिवासु, या फिर ऐसे मुष्टि को अंगूठा अंदर रख करके ऐसे बांध लिया, और बांध कर जितनी देर आप बांध करके रख सकते हैं उतनी देर बांध करके सामायिक में स्थिर रहिए। फिर कुछ समय बाद लगेगा कि बस अब काफ़ी हो गया, बोल लीजिए सामायिक पूरी हो गई। ये काल का परिमाण दिया है। फिर तीसरा क्या दिया, वासो बंधम, अपने जो वस्त्र हैं उनमें कोई ऐसा बंध बांध रहे, ऐसे गठान लगा ले कि जो कुछ समय बाद अपने आप ढीला पड़ जाए, तो उतना उसका काल है। अब वस्त्र में अगर आप कोई रीफ नॉट या कोई ऐसी खतरनाक गांठ लगा दो तो फिर वो फिर खुलना ही मुश्किल, फिर तो आपको स्नान के समय भी खोलना मुश्किल हो जाए, ऐसी गठान मत लगाए। और बंधम पर्यंक बंधनन चापी, और पर्यंक बंधन ये है कि इस आसन में आप बैठ जाएं तो इसमें अंगूठे के बीच की रेखाएं मिलनी चाहिए, चाहे बाहर से मिला लो या फिर अंदर से मिला लो, लेकिन अंगूठे के बीच की रेखा, मध्य रेखा मिल जानी चाहिए। तो ये पर्यंक बंधन हो गया। तो इसको ऐसे नाभि स्थान पर रख करके बैठिए, जितनी देर बैठ सकते हो उतना सामायिक का काल होता है। ये पर्यंक आसन है, नहीं जगह नहीं रखना, नाभि गोतन दोनों नाभि स्थान पर हो, हाँ टच हो जाएंगे, टच नहीं करोगे तो फिर अलग हो जाएंगे ना, नाभि कितनी बड़ी है। नहीं आचार्य से टच करते ना, वो ऐसे करते हैं, देखिए ये मतलब वो नीचे वाले हाथ को ऐसे सीधा रखते हैं और फिर ये ऊपर। आप फोटो धन लक्ष्मी के मंदिर जी में है फोटो आचार्य का, बिल्कुल यही मुद्रा में फोटो, हल्का सा टच रखते हैं। वहाँ पर्यंकासन के स्वरूप में ही दिया, पर्यंको नाभि गोत्तान दक्षिण उत्तर पाणिका। अब इसमें उत्तान शब्द आया है, उत्तान शब्द के अर्थ को लेकर के कहीं कुछ थोड़े बहुत विवाद चल रहे हैं कि उत्तान जो है उसका अर्थ क्या है, ऊपर की तरफ तना हुआ ये उत्तान का अर्थ है। अगर ये अर्थ हो ऊपर की तरफ तना हुआ तो फिर पर्यंकासन में ऐसा बैठना पड़ेगा, पर ऐसा बैठा जा सकता है ये। फिर इसमें आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में, पद्म पुराण में आदिनाथ भगवान ने उत्तान करांजलि में आहार ग्रहण किया। अब उत्तान करांजलि, अगर अपन उत्तान का मतलब ऊपर की तरफ तना हुआ ले लें तो इसमें तो इक्षुरस का भी नहीं लिया जा सकता, और बाकी चीज़ें भी साधु कैसे ले सकते हैं ऐसे करके। ऐसे करके लेना तो मतलब एक लड़कपन जैसा दिखेगा और साधु की गरिमा और गंभीरता के प्रतिकूल हो जाएगा, तो उनको ऐसे ही लेना होगा। तो उत्तान शब्द का अर्थ यही है, ऐसा समझ में आता। अब इसमें और भी किसी का चिंतन हो तो फिर अपन और उस पर विचार कर सकते। तो ये पर्यंकासन। फिर संकुचित गात्र शयन, संकुचित गात्र शयन का अर्थ होता है कि एकदम सिकुड़ करके सो जाना। संकुचित गात्र, गात्र का अर्थ होता है शरीर। शरीर के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, तनु, गात्र, शरीर, देह, वपुह, ऐसे कई शब्द। तो संकुचित गात्र शयन का मतलब एकदम सिकुड़ करके शयन करना। ये इसमें काय क्लेश तप के अंतर्गत कहा गया है। और उसके बाद उत्तान शयन, उत्तान शयन करना, उत्तान शयन का अर्थ सीधे सो जाना काय क्लेश तप में। फिर मकर मुख, मकर मुख का अर्थ होता है कि मगरमच्छ का मुंह जो होता है वो ऐसे खुलता है और बाकी पूरा शरीर ऐसा रहता है। तो उस प्रकार से साधु यदि ऐसे उल्टे लेट करके ये हाथ यहाँ रख ले और पूरी रात्रि व्यतीत कर दे, कहते हैं कि जिनका पेट अनुचित वृद्धि को प्राप्त हो गया है उनको प्रतिदिन 20 मिनट ये मकरासन करना लाभकारी होता है। तो ये यहाँ तो रात भर साधु उसी मुद्रा में रहेगा, मकर मुख। फिर हस्तिशुंड, हस्तिशुंड यानी हाथी की सूंड के समान सो गए, ऐसे सीधा रखा पैर ऐसे मुड़े हुए। फिर मृतक शयन ही, मृतक शयन का अर्थ होता है जैसे शव है उसके समान शवासन में सो गए। ये शवासन में क्या होता है कि पैरों के बीच में जो कोण बनता है वो 30 डिग्रीज का कोण होता है और हाथों के बीच में 15-15 डिग्रीज का कोण होता है। यानी पैर ऐसे रहेंगे तो हाथ भी ऐसे उसके समानांतर होंगे, तब जाकर के वो कोण बनेगा, क्योंकि सेंट्रल लाइन जो रहेगी मीडियन लाइन, तो उससे इधर गिनो तो ये 15 डिग्रीज हो गई पैर की, इधर गिनो तो 15 डिग्रीज होगी, तो 15 और 15 30 डिग्रीज होगी। और फिर यहाँ शरीर से पैरेलल हाथ ऐसे रख दिए तो फिर ये यहाँ का जो कोण है ये 15 डिग्री का कोण बनेगा, और फिर ये आप कभी लेट करके किसी से पूछ सकते हैं कि कितने डिग्रीज आ रहे हैं, और वो अच्छा जानकार हो डिग्री का, ज्योमेट्री वगैरह अच्छा पढ़ने वाला, तो फिर वो बता सकता है। वैसे अभ्यास से आ भी जाते हैं। एक पार्श्व, फिर एक पार्श्व माने एक करवट से, और दंड धनुषय्या भी, या फिर दंड एक डंडे के समान सीधा शरीर करके सो जाए, या धनुषय्या बीच से सिर्फ कमर के स्थान से शरीर थोड़ा सा मुड़ा हो, बाकी पैर भी सीधे हो और फिर ये भी सीधा हो, इस तरह शरीर परिखेद कायक क्लेश, शरीर इस प्रकार से परिखेद को प्राप्त हो जाता है, उसको कायक क्लेश तप कहते हैं। तथा प्रमृष्ट स्तंभाधिक मुपाश्रित्य, प्रमृष्ट स्तंभाधिक मुपाश्रित्य माने पिच्छी से परिमार्जित किए गए खंबे आदि का आश्रय लेकर स्थानम, खड़े हो जाना, उद्भिभवनम, उद्भिभवन देखिए संस्कृत शब्द है और गुजराती में बोलते हैं ना उभो थई जा, तो ये उभा होना, उभा होना का मतलब क्या, ये इसी संस्कृत भाषा से ही बना हुआ ये गुजराती शब्द है, उठकर खड़े हो जाना, उद्भिभवनम। फिर स्थापित स्थानम निश्चयम अवस्थानम, फिर अपना स्थान उस तरह से स्थापित कर लिया उनने, उसमें कायोत्सर्ग कर रहे हैं, कायोत्सर्ग। फिर समउपादो कृत्वा स्थानम, दोनों पैरों को समतल करके खड़े हो जाना, एकेन पादेन अवस्थानम, एक पैर से अवस्थित हो जाना, खड़े हो जाना, बाहु प्रसार्य अवस्थानम, हाथों को ऐसे फैला करके अवस्थित हो जाना, इत्यादि कई कायोत्सर्ग ही शरीर क्लेशनम, इत्यादि कायोत्सर्गों के माध्यम से शरीर का क्लेशन जो होता है। फिर रात्रो अशयनम, फिर रात्रि में शयन ही नहीं करना, ये भी एक काय क्लेश तप है। सिद्धप्पा महाराज ने आचार्य शांति सागर महाराज जी को एक संस्मरण सुनाया था कि उनके जो गुरु थे श्री सिद्ध, और फिर उनके परिचित उस समय के कुछ तपस्वी थे, उनमें से एक ऐसे साधु भी थे कि जिन्होंने कई दिनों तक रात्रि में शयन नहीं किया था, 18-18 रातों तक वो जागरण करते रहते थे, ऐसे तपस्वी भी साधु होते। ये काय क्लेश नाम का तप, वैसे तो श्रावकों के उत्कृष्ट उपवास में बताया है कि 2 रात्रियों तक जागृत रहना, जैसे आपको अष्टमी का उपवास करना है तो सप्तमी की रात्रि को जागृत रहना और अष्टमी की रात्रि को भी जागृत रहना, और पूरा काल धर्म ध्यान में व्यतीत करना, ऐसा विधान आता है। अब इन्होंने तो मतलब 18-18 दिन जागृत रहना, कितनी बड़ी बात, निद्रा विजय बोलते हैं इसको। जबकि मेडिकली देखा जाए तो बॉडी को +7 ± 2, एक बहुत बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर ने हमसे कहा था कि शरीर को कम से कम 7 घंटे की निद्रा चाहिए, अब उसमें अगर आप बढ़ाना चाहो तो अधिक से अधिक 9 घंटे, 24 घंटे में, और कम करना चाहो तो 5 घंटे। लेकिन ऐसे तपस्वी साधु, इनकी तो खैर महिमा अपरंपार है कि सब इंद्रियों को जीत करके ऐसा काम कर लेते। अस्नानम दंतानाम अशोधनम इत्यादि का कायक क्लेशनम, इत्यादि कायक क्लेशन वो सहते रहते हैं। किमर्थम कायक क्लेश, क्या जरूरत है ये सब करने की, तो कहते हैं वर्षा शीतातप विसंस्थुलासन विषम शय्यादिषु शुभ ध्यान परिचर्यार्थम। देखो वर्षा के समय, शीत के समय, आतप यानी खूब घाम पड़ रही हो उस समय, और विसंस्थुल आसन, विसंस्थुल आसन का मतलब क्या होता है कि जमीन उबड़ खाबड़ है लेकिन वहां पर एक आसन लगा करके बैठ गए। उबड़ खाबड़ जमीन में आसन लगा करके बैठना भारी काम है, लेकिन वो शरीर की जो ममता है वो अपने को पता नहीं रहता, कई बार अपने को लगता है कि अब तो मेरा शरीर से कोई मोह नहीं, क्योंकि थ्योरी सुन करके बहुत मन ऊपर आसमान में चला जाता है, कुछ बातें सुन करके ऐसा लगता है कि ये तो सब आ गया मेरे, बिल्कुल कैच कर लिया मैंने, अब कैच कर लिया ये तो ठीक है लगता है अपने को, लेकिन वहां पर परीक्षा की घड़ी आ जाए तो फिर पता चलता है कि मेरी ममता अभी टूटी नहीं है। तो विसंस्थुल आसन, ऐसा आचार्य ने भी ये वाला तप किया हुआ विसंस्थुल आसन, मैंने उबड़ खाबड़ स्थानों पर ध्यान लगा कर बैठे हुए हैं तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक बैठ जाते हैं, और कभी नीचे गिट्टियां हैं, कंकर है, उसके ऊपर जाकर के बैठ गए ध्यान लगाकर कायोत्सर्ग, तो ये भी काय क्लेश तप। फिर विषम शैया दिशु, विषम शैया का मतलब होता है कि जो शैया माने सोने का स्थान विषम है, सम नहीं है। कभी कभी पाटे जैसे ये सामने आपके उदाहरण है, ये पाटे का बीच वाला जो पटिया है वो ऊपर है और बाकी दोनों जो है उस बराबर, इसको बोलते हैं विषम। इस पर शयन करना ये भी एक प्रकार का काय क्लेश तप। क्यों करते हैं ऐसा? शुभ ध्यान परिचर्यार्थम, शुभ ध्यान की परिचर्या के लिए, दुस्सह सहनार्थम, दुखोपसहनार्थम, दुखों को भी सहन करने के लिए, और विषय सुख भंगार्थम, विषय सुख भंग हो जाए। क्योंकि ठीक है जैसे भी सो रहे हैं साधु अपनी तपस्या से कर रहे हैं, लेकिन उतना भी सुख न रहे, उसको भी भंग कर दें इसलिए। और शासन प्रभावनाद्यर्थम, और धर्म की शासन की प्रभावना करने के लिए, और स्वकाय क्लेशानुष्ठानम क्रियते, अपने शरीर को क्लेश प्रदान करने वाला अनुष्ठान किया जाता है। इति एतद् बाह्यं तपः षड्विधं बाह्य जनानां मिथ्या दृष्टीनां अभिप्रकटं प्रत्याख्यातम्। इस प्रकार यह जो बाह्य तप है, बाह्य जन, बाह्य माने जो जिनमत से बाहर के लोग हैं, मिथ्या दृष्टि जन है, उनके लिए भी ये प्रकट है, माने वो भी देख सकते हैं कि क्या तपस्या है, इसलिए इसको बाह्य तप कहा गया है, वो यहाँ पर पूर्ण हो गया। अथ आभ्यंतर षड्विधं तपो विधानं व्याख्यायते, अब अंतरंग तप के जो छह भेद हैं उनका व्याख्यान किया जाता है। तत्र प्रायश्चित्तं तपो गाथा पंचकेनाः, अब उसमें प्रायश्चित्त नाम का जो तप है उसको पांच गाथाओं के द्वारा आचार्य कहते हैं। हाँ यहाँ तो लिखा है कि उसके लिए शासन प्रभावनाद्यर्थम, उसके लिए करते हैं। शांति सागर महाराज श्री ने जो अन्न का त्याग किया था तो वो धर्म रक्षा कह लो, जो 1105 दिन तक उनने अन्न का त्याग रखा था, सिर्फ इसलिए कि कानून की तरफ से जो फैसला होने जा रहा था कि जैन मंदिर में बेरोक टोक कोई भी प्रवेश कर सकता है, उसके खिलाफ। फिर रविशंकर शुक्ला उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनके मित्र अपने एक जैन विद्वान पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री थे, उनसे उनने कहा कि क्या तुम्हारे साधु ने ये तमाशा खड़ा करके रखा है, तुम्हारे गुरु ने इस मुद्दे पर ये सब क्यों त्याग करके रखा है, तुम लोगों को आपत्ति क्या है, अगर मंदिर में कोई भी प्रवेश करे तो तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है। तो फिर जगनमोहन लाल जी ने कहा कि हमारे मंदिरों में माताएं बहनें अभी बेरोक टोक धर्म ध्यान करती हैं, और यदि मंदिर व्यसनियों का अड्डा बन जाएगा तो फिर वो धर्म ध्यान कहाँ करेंगी, वो अधिकार पूर्वक प्रवेश चाहते हैं, इसलिए हमारे गुरु ने ऐसा अनुष्ठान किया है। यदि वो श्रद्धा पूर्वक प्रवेश चाहें तो फिर उसके बारे में अलग विचार होगा, लेकिन अधिकार पूर्वक प्रवेश चाहते हैं तो वो अपने मांस मदिरा आदि का त्याग किए बिना मंदिर में आकर मंदिर के वातावरण को प्रदूषित करेंगे, तो ये बात हमारे गुरु जी को इष्ट नहीं है, इसलिए वो ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं। और वास्तव में 1106 दिन तक जब उनने अन्न का त्याग रखा, सब लोग कह कह करके थक गए कि आचार्य श्री इससे कुछ नहीं होने वाला, सरकार पर किसी का असर नहीं पड़ता बोले। और बॉम्बे में जो हाई कोर्ट है वहाँ पर जब वो अंतिम फैसला देने जा रहे थे तो जज ने न जाने क्यों उस केस को अपने हाथ में लिया और पूछा कि वो क्यों प्रवेश करना चाहते हैं मंदिर में, क्या वो जैन धर्म को मानते हैं, ये शंका उनके अपने आप अंदर से उठी जज के। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मानते, तो फिर बोले कि नहीं होगा प्रवेश, ये मेरा फैसला है, खत्म। तब लोगों को समझ में आया कि आचार्य शांति सागर महाराज जी की तपस्या का क्या असर होता है, तो शासन की प्रभावना भी हो गई और रक्षा भी हो गई मंदिरों की, ये उसका। दोसं न करेदि स्वयं अन्नं पिणकारयेदि ज्योतिविहं कुव्वाणं पिण इच्छति तस् विसोहि पराहुदि। जो स्वयं दोष नहीं लगाते, अन्य से भी दोष नहीं कराते, और तिविहम का मतलब मन वचन और काय, तीनों प्रकार के, तीनों से संबंध रखने वाले दोष जो स्वयं नहीं करते, दूसरे से नहीं कराते, और कुव्वाणम पिण इच्छेदि, करने वाले का समर्थन नहीं करते, तस्य विशुद्धि परा होति, उनकी विशुद्धि उत्कृष्ट होती है। तस्य मुनि तपस्विनः परा विशुद्धि परा उत्कृष्टा विशुद्धि निर्मलता प्रायश्चित्तं भवति। विसोहि छेद नय प्रायश्चित शुद्धि, ऐसे सब पर्यायवाची शब्द हैं।